हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हज़ारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुनैना की आवाज़ और उसका सवाल सुनकर आदित्य ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी और अफसोस नैना को साफ नज़र आया, लेकिन उसे इस तरह देखकर सुनैना को बहुत बुरा लगा। वो बाकी सारी बातें भूलकर तुरंत ही आदित्य के गले से लग गई और बोली, नहीं आदित्य नहीं, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें उस जहर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना बोलते हुए सुनैना की भी आंखों से आंसू निकल आए। वो आदित्य के शरीर कांपता हुआ महसूस कर पा रही थी, इसलिए उसने आदित्य को बहुत ही कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसकी पीठ पर अपने हाथ से पकड़ बना ली। वो उसके एकदम नज़दीक खड़ी थी। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य ने भी अपने हाथ सुनैना के इर्द गिर्द लपेट लिए और अपनी बाहें उसके सिर से निकालीं। आदित्य की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। कुछ पल के लिए वे दोनों इसी तरह एक दूसरे के एकदम नज़दीक खड़े रहे। एक मिनट के बाद आदित्य बोला, आई एम सॉरी सोना, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं सच में ड्रिंक नहीं करना चाहता था, लेकिन ये चाचा चाची पता नहीं क्यों आए थे यहाँ पर मेरा दिमाग खराब करने के लिए। ये लोग सच में बहुत लालची हैं और सच में मैंने किसी का भी हिस्सा नहीं लिया है सुनैना, तुम्हें मेरी बात पर यकीन है ना? आदित्य उसे सफाई देता हुआ ये सब बोला। सुनैना उससे थोड़ा सा दूर हुई और सर उठाकर आदित्य के चेहरे की ओर देखा। फिर उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच पकड़ लिया। उसके ऐसा करने पर आदित्य को भी काफी अच्छा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे सुनैना हमेशा ही इस तरह से उसके साथ है। सुनैना उसी तरह आदित्य का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बैठक की ओर ले आई और उसे बेड पर बिठा दिया। खुद उसके सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए उसने उसका हाथ पकड़कर बोली, आई नो आदित्य, मुझे सब कुछ पता है, और अगर पता नहीं होता ना, फिर भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, और वे लोग तो शक्ल से ही लालची और मतलबी लगते हैं, उनके बारे में सोचकर खुद को तकलीफ मत दो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। इतना बोलते हुए सुनैना ने आदित्य का एक हाथ छोड़ते हुए उसके गाल पर हाथ रखा। आदित्य ने अपना चेहरा हल्का सा तिरछा करते हुए सुनैना के हाथ को अपने गाल और कंधे के बीच में दबाने लगा। ऐसा करते हुए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। अपनी ओर से उसे सहज करने की सुनैना पूरी कोशिश कर रही थी। आदित्य अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था, इसलिए अपनी आंखें खोलते हुए उसने सुनैना की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, थैंक यू सो मच सोना, मुझ पर विश्वास करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस हमेशा ही मेरे साथ रहो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सुनैना ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर मुश्किल और परेशानी में, कहीं भी नहीं जाने वाली मैं। सुनैना की इस बात पर और उसकी मुस्कुराहट देखकर आदित्य को भी काफी ताकत मिली। उसने सुनैना के कंधे पकड़कर उसे जमीन से उठाया और खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए उसे फिर से गले से लगा लिया। सुनैना भी काफी सहज उसकी गोद में उसके गले लगकर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराते देखकर आदित्य भी अच्छा महसूस कर रहा था। शाम का वक्त था। अनय के घर में मनस्वी की माँ आज वापस जाने की जिद कर रही थी। वो पहले भी काफी समय से अपने बेटे के पास वापस जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन मनस्वी या फिर अनय ने बार बार उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर रोक लिया था। अब उनकी तबीयत भी पहले से काफी ठीक हो चुकी थी, इसलिए इस बार वे नहीं रुकने वाली थीं। मनस्वी की माँ ने कहा, मेरी कल की ट्रेन की टिकट बुक हो गई है और मानव भी मुझे लेने आने वाला है, इसलिए आज मैं तुम दोनों की नहीं सुनने वाली, वैसे भी काफी दिन रह लिया मैंने यहाँ पर। अनय ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मम्मी आप चली जाएंगी तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपके रहने से सच में बहुत अच्छा लगता था मुझे, घर में हम दोनों कितनी सारी बातें करते थे और साथ में टीवी शोज भी देखते थे। अनय की बात पर मुस्कुराते हुए उसकी सास ने कहा, अरे तो मैं फिर आ जाऊंगी ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने, या फिर इस बार तुम ही जयपुर आ जाना मनु को लेकर, शादी के बाद से तुम लोग एक बार भी वहाँ पर घूमने नहीं आए हो, सब लोग तुम दोनों को याद करते हैं। असल में तो मनस्वी से ज्यादा अनय ही उनके साथ क्लोज था और वही उनसे वहाँ पर और दिन रुकने का अनुरोध भी कर रहा था। उसकी बात मानते हुए ही वे दो हफ्ते से ज्यादा यहाँ पर रुके थे, लेकिन इस बार उन्हें सच में वापस जाना था, क्योंकि आखिर बेटी के घर वे कितने दिन रह सकती थीं। मनस्वी ने भी एक दो बार अपनी माँ से वहाँ पर रुकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उसके भाई के वहाँ आने वाली बात बताई। तो फिर मनस्वी ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन वो भी मन ही मन नहीं चाहती थी कि वो वहां से जाए, क्योंकि उनके जाने से शायद उसके और अनय के बीच काफी कुछ बदल जाएगा और वो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी हो। तभी अनय ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चली जाइए, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद मैं आपको लेने वहां आऊंगा, इसी बहाने बाकी सबसे भी मिल लूंगा। मनस्वी की माँ ने बहुत ही प्यार से अनय के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे लेने आओगे तो फिर से मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी बेटा, तुम्हें भला मैं कभी मना कर सकती हूँ क्या? उनकी इस बात पर अनय मुस्कुराया और कुछ सोचते हुए एकदम से बोला, अच्छा कल तक का टाइम है ना, एक मिनट मैं देख कर आता हूँ आपकी कौन सी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, और बाकी प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर से दोबारा लिखवाकर आपकी सारी दवाइयाँ भी ले आऊँगा, और आप टाइम से अपनी दवाइयाँ भी लेना मम्मी। अनय की बात पर मनस्वी की माँ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कितनी फिक्र करता है बेटा तू मेरी, ठीक है मैं टाइम से दवाई लूंगी, आखिर तुम्हारे और मनस्वी के बच्चे खिलाने के लिए मुझे ठीक भी तो रहना है ना, और जिंदा भी। उनकी बात सुनकर मनस्वी एकदम से बीच में बोल पड़ी, मम्मी आप ये क्या बोल रही हैं? मनस्वी की माँ ने मजाक में कहा, अरे क्यों, तुम नहीं चाहती क्या मैं तब तक जिंदा रहूँ? अनय ने मनस्वी की तरफ से बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो शायद बस थोड़ा शर्मा रही है, और मैं बस अभी आता हूँ दवाइयाँ और बाकी चीजें देखकर, अनय की उसकी तरफ से बोला। मनस्वी को उसकी शर्माने वाली बात पर यकीन ही नहीं हुआ, उसने इस पर यकीन करने के लिए जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाई, लेकिन अनय तब तक वहाँ से उसकी माँ के कमरे की ओर बढ़ गया। वे माँ बेटी दोनों ही अनय को वहाँ से जाते हुए देख रही थीं। जब वो कमरे के अंदर चला गया और पूरी तरह उनकी आंखों से ओझल हो गया तो मनस्वी की माँ ने कहा, ऐसे क्या देख रही है हम उसे, कमरे तक ही गया है वो। मनस्वी उस तरफ से अपनी नजरें हटाते हुए बोली, नहीं नहीं मम्मी मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देख रही, मैं तो बस, वैसे आप ये सब बातें क्यों बोलती हो, बच्चे और बाकी सब? मनस्वी की माँ ने जानबूझकर ये सवाल किया। क्यों, तुम दोनों के बच्चे नहीं होंगे क्या, जैसे बाकी शादीशुदा जोड़ों के होते हैं, और इसमें गलत क्या बोला मैंने? क्रमशः